परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर हमारे विश्वास को तरह तरह से परखता है और इसके हमने 6 कारण देखे हैं जिसे मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। पहला है, परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। दूसरा, परमेश्वर बुराई देकर हमारे विश्वास को नहीं परखता है। तीसरा, परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। चौथा, मनुष्यों के साथ हमारे व्यवहार को देखकर परमेश्वर हमारे विश्वास को आंकता है। और पांचवा, परमेश्वर हमारे द्वारा जीभ के प्रयोग को देखकर हमारे विश्वास को जांचता है। और छठवां, परमेश्वर हमारे कर्मों द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। हमने इन बातों को देखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम इस पृथ्वी पर जीवितों के बीच जीवित रहकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में बोलने और बातचीत करने पाए, प्रत्येक के जीवन को सुधारने पाए। हाँ प्रभु, आप हम सब की सहायता करें। और हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति और छुटकारा प्रदान करें, ताकि वे भी आपको धन्य कहने पाए, आज के वचन पर अपने आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, तो इस अध्याय का विषय है सांसारिकता की मूर्खता और निरस्ता। याकूब इस अध्याय में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएगा। सांसारिकता क्या है? एक विश्वासी शैतान का सामना कैसे करे? आपका जीवन क्या है? ये सब प्रश्न सांसारिकता में ही केंद्रित होंगे। सबसे पहले याकूब इस प्रश्न का उत्तर देगा, सांसारिकता क्या है? मेरा मानना है कि हमारी रूढ़िवादी कलीसिया में एक औसत मनुष्य अनेकों उत्तर में से एक देगा। सांसारिकता आपके मनोरंजन का विषय है, जैसे आप सिनेमा देखते हैं। और किस प्रकार का सिनेमा देखते हैं? क्या आप नाचते हैं? क्या आप शराब पीते हैं? वे इन्हीं बातों को सांसारिकता कहते हैं, परंतु याकूब इनसे सहमत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे, आपकी संगति क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो यह सब काम करते हैं, तो आप भी सांसारिक हैं। मेरे मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आप यह उत्तर देते हैं तो आप याकूब की पाठशाला में अनुत्तीर्ण होंगे, आप फेल हो जाएंगे। कुछ लोग यह भी कहेंगे, आपकी बातें आपको सांसारिक सिद्ध करती हैं। आपको कहना चाहिए, जय मसीह की, हालेलुया आदि। यह भी सही उत्तर नहीं है, आप उत्तीर्ण नहीं हुए। तब कुछ लोग कहेंगे, आप कैसे कपड़े पहनते हैं वह सांसारिकता प्रकट करते हैं। आप फिर से अनुत्तीर्ण होते हैं। कुछ लोग कहेंगे धन कमाने वाला सांसारिक मनुष्य है। आप भी याकूब की पाठशाला में फेल रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे आराधना में जाने के समय खेलना सांसारिकता है, टीवी देखना सांसारिकता है। मेरे मित्रों, मैं इन बातों का पक्ष नहीं लेता, परंतु यह सांसारिकता नहीं है। ये सब दैहिक पाप है, ये सब रोग के लक्षण हैं। परंतु मनुष्य लक्षणों के कारण नहीं मरता है। समस्या तो गहरी है जिसके ये सब लक्षण हैं। किसी आराधनालय में एक घड़ी थी जो सही समय नहीं दिखाती थी। उस घड़ी के नीचे लिखा था, कांटों को दोष न दें, समस्या भीतर है। हमें अपने जीवन में यही समझना है। जिसे हम सांसारिकता कहते हैं वह उस घड़ी के कांटों के समान है। समस्या तो भीतर है न कि बाहर। विलियम ठाकरे एक उपन्यासकार थे। किसी ने उनसे कहा, आप अपने उपन्यासों में गिरा हुआ मनुष्य ही क्यों दिखाते हैं? क्या आपके पास अच्छे नायक नहीं हैं? उन्होंने कहा, मैं प्रकृति के सामने दर्पण रखता हूं और मानव जाति में अच्छे नायक नहीं देख पाता। अपने एक उपन्यास निस्सारता का मेला में वह अंत में कहते हैं, बच्चों आओ हम अपने बक्से और कठपुतलियां उठा लें, क्योंकि खेल समाप्त हो गया है। मनुष्य सांसारिकता से भरा हुआ है। डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस ने अधिक निकटता दर्शाते हुए किसी के प्रश्न, आपके विचार में क्या संसार मसीह का विश्वासी नहीं हो रहा है? इसका उत्तर देते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं है। मेरे विचार में संसार कलीसिया विश्वासी हो रहा है, परंतु कलीसिया अत्यधिक सांसारिक हो रही है। मेरे प्रियो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कलीसिया और संसार के बीच की दीवार गिरा दी गई है। उस समय अनेकों द्वारा अपनाया गया विभाजन विधिपरक था और मेरे विचार में वह धर्मशास्त्र आधारित नहीं था। कलीसिया उस वीर बालक के समान थी जो बांध के छेद में उंगली डालकर खड़ा था। परंतु विश्व युद्ध के बाद टीवी, अव्यवस्था, अनैतिकता, युवा अपराध, फिर हिप्पी, फिर नशीले पदार्थ तथा अस्तित्ववाद का विचार आया। बाढ़ के कारण विभाजन का बांध टूट गया और वह वीर बालक बह गया। अतः सांसारिकता क्या है? इसका सरल उत्तर नहीं है। मैं याकूब का उत्तर सुनना चाहता हूं जो सांसारिकता की निश्चित व्याख्या है। याकूब कहता है, सांसारिकता कलह और ईर्ष्या है। उसका यह विचार देखने के लिए हमें अध्याय 3 देखना होगा। पद 13 में वह कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब की पाठशाला का मुख्य विषय विश्वास है और अन्य सब विषय विश्वास से ही संबंधित हैं। मेरे प्रियो, विश्वास के काम दीनता उत्पन्न करते हैं। याकूब के पत्र 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें दीनता और विनम्रता होती है, और दीनता का अर्थ है अधीन होना। याकूब की पत्री 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यह सांसारिकता है। कलीसिया में सांसारिकता ने अनेक पंथ, कलीसियाई वर्ग, विभाजन और गुट बनवा दिए हैं, जिनकी आज मसीही समुदाय में भरमार है। कलीसिया में विरोध और ईर्ष्या की आत्मा है। पिछले पदों में याकूब इसे संसारिकता कहता है, अर्थात लौकिक। यह मनोवैज्ञानिक है और शैतानी है, जो अत्यधिक भयानक है। मेरे मित्रों, संसार में ईर्ष्या और कलह क्या लाते हैं? वे बखेड़ा और दुष्कर्म लाते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ हम अध्याय 4 में कही गई याकूब की बातें समझ सकते हैं। तो आइए हम याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? लिखा है लड़ाइयां, अर्थात देश देश में युद्ध। झगड़े अर्थात कहा सुनी या नोक झोंक। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? मेरे प्रियो, आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है। सुख विलास अर्थात विलासिता झगड़े और अव्यवस्था का कारण है, नोक झोंक और शरीर के अंगों की संतुष्टि की लालसा। और यही कारण है कि लोग संसारिकता में बढ़ते हैं। तब वह आगे कहता है याकूब की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। याकूब यहां पर स्पष्ट कहता है कि लालसाओं के कारण लड़ाइयां होती है। लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति सांसारिकता है, यह मसीही आचरण नहीं है, न ही यह मसीही व्यवहार है। ये बातें पुराने स्वभाव को दर्शाती हैं। मनुष्य को मसीह में विश्वास के द्वारा नया जन्म लेना है और उसमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, याकूब द्वारा वर्णित यह सांसारिक प्रवृत्ति जब कलीसिया में प्रवेश करती है, तब कलीसिया सांसारिक हो जाती है। आपके विचार में क्या युद्ध क्षेत्र भयानक हैं? जी हां, परंतु कुछ कलीसियाओं में और कुछ मनुष्यों के मन में भी ऐसी ही भयानक अवस्था है। कुछ व्यवसायों में कुत्तों के समान लड़ाई है, यह सांसारिकता है। राजनीति में दलों में विभाजन होता है और वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मजदूर और मालिक में परस्पर विरोध है। सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे की टांग खींचकर ऊपर उठना है। आपके पड़ोस में ही देखिए, एक मनुष्य दूसरे से बात नहीं करता है। परिवारों में देख लीजिए, भाई भाई के खून का प्यासा है। यही स्वभाव कलीसिया में भी आ जाता है। यही तो सांसारिकता है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में रखना है कि वह पूरी हो या अस्वीकार हो या अधिक अच्छी हो। हमें परमेश्वर के उत्तर को स्वीकार भी करना होगा। अब इस सांसारिकता का समाधान क्या है? प्रार्थना। जी हां, प्रार्थना। अतः यह परमेश्वर में विश्वास है। प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त की जाती है हमारा विश्वास है। उत्तर है परमेश्वर में पूरा भरोसा रखना, प्रार्थना में उसके पास जाना और अपना मन उसके सामने रख देना। यदि आप देखें कि आपके मन में कलह और विरोध है, तो परमेश्वर से बात करें। हम प्रायः परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, और क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए वह हमें टॉफी दे। मेरे मित्रों, हमें अपने जीवन के व्यवहारिक स्तर पर आना होगा। मध्यकालीन युग के एक खत ने लिखा है, फेन लोन, परमेश्वर को अपने मन की सब बातें बता दो, जैसे कोई अपने मन के दुख सुख एक प्रिय मित्र से बांटता है, उसे अपने कष्ट बताओ कि वह शांति दे, उसे अपनी खुशियां बताओ कि वह आपको दीन बनाए, उसे अपनी लालसाएं बताओ कि वह उन्हें शुद्ध करे, उसे अपनी अप्रसन्नता बताओ कि वह आपको विजय प्रदान करे, उससे अपनी परीक्षाओं को बताओ, उसका उल्लेख करो कि वह आपकी उनसे रक्षा करे, उसे अपने दिल के पास आने दो, उसे अपने दिल के घाव बताओ कि वह आपको चंगाई दे, उसके सामने उसकी भलाई के प्रति उदासीनता, बुराई के आपके भ्रष्ट विचार, अपनी अस्थिरता खोल कर रख दें, उसे बताएं कि आपका स्वार्थ कैसे दूसरों के साथ पक्षपात करवाता है, निस्सारता कैसे आपको विश्वासघात की परीक्षा में डालती है, घमंड कैसे स्वयं और अन्यों के सामने आपको ढोंगी बनाता है। मेरे मित्रों, ये सब कुछ आपको उसके सामने बताने की आवश्यकता है। इस प्रकार यदि आप अपनी दुष्टता, आवश्यकताएं, परेशानियां व्यक्त करना सीख लें तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी और आपका विषय कभी समाप्त नहीं होगा, वह लगातार नया होता जाएगा। जिनमें कोई भेद छिपा ना हो उन्हें बातें करने में शब्दों की कमी नहीं होती, वे सोचकर नहीं बोलते क्योंकि छिपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है और न ही उन्हें कहने के लिए शब्दों को ढूंढना होता है, वे मन की भरपूरी से बात करते हैं, बिना सोचे समझे जो सोचते हैं कह देते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसा परिचित एवं आरक्षित वार्तालाप करते हैं। मेरे मित्रों, मुझे याद है कि जब मैं एक बार बीमार था तब मैंने यह अनुभव किया कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अब मैं और मेरी पत्नी घर में अधिक समय बिता सकते थे, प्रार्थना में समय दे सकते थे और उसके और करीब आ सकते थे। हमने विवाह के बाद इतना समय एक साथ घर पर कभी भी नहीं बिताया था। उसी दिन से हम काम में व्यस्त थे। हमने देखा कि हमें कुछ बातों पर परस्पर आदान प्रदान करने की आवश्यकता है, अन्यथा उनसे मन मुटाव उत्पन्न हो सकता था। हमें अच्छी बातें करने का अवसर मिला और हमने एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। वह वास्तव में एक आनंद का समय था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यह तो हमारे पहले मिलन से भी बहुत उत्तम है। परमेश्वर के साथ भी हमें ऐसा ही संबंध बनाना है कि हम उसे जाने, उसके निकटता में समय दें, वचन पढ़ें और उसमें बलवंत होते जाएं। परमेश्वर का वचन पढ़कर और संत फेनेलन के विचार सुनकर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं परमेश्वर को सब कुछ बता दूंगा। मैंने अपने जीवन के हर एक बात, हर एक पाप और संध्यात्मक बातों को प्रभु ईश्वर के सामने रखा है। वह जानता है, वह समझता है और वह मुझे क्षमा करता है। मेरे प्रियो, आपके मन की ईर्ष्या, कटुता और विरोध को निकालने का एक ही तरीका है, प्रभु ईश्वर के पास आ जाएं। आपको मनोवैज्ञानिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक आपकी समस्या को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देगा। आपको इससे मुक्ति पाने के लिए सिर्फ प्रभु ईश्वर को ही सब कुछ बताना होगा, क्योंकि वही आपकी इन गंदगियों को साफ कर सकता है। याकूब कहता है, समाधान प्रार्थना है, परंतु हम अपने लालसाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। याकूब हमें आगे कहता है, याकूब की पत्री 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यह सच है, हम परमेश्वर से मांगते हैं तो केवल इसलिए कि अपने स्वार्थ की बातों को पूरा कर सकें। और उसे हम यूं ही उड़ा दें। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में वह आगे कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसार से समझौता करते हैं। याकूब हमें व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों कहता है। यह संसार की रीति है कि छीन लो, एन केन प्रकरण प्राप्त करो, दूसरे से ईर्ष्या करो, झगड़े उत्पन्न करो, यह संसारिकता है। याकूब कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? मुझसे कहा जाता है कि मैं क्लब का सदस्य बनूं, परंतु मैं इनकार कर देता हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कलीसिया ही में विपुल संसारिकता है, जो फिर मुझे सांसारिक संस्थाओं का सदस्य क्यों बनना है? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आपका जीवन किस प्रकार का है। क्या आप सांसारिकता का जीवन जी रहे हैं? याकूब हमें समझा रहा है कि सांसारिकता क्या है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम सांसारिकता से बाहर आ जाएं। जैसे यहां पर लिखा है कि जो संसार से प्रेम रखता है वह परमेश्वर का बैरी है। क्या आप परमेश्वर के बैरी तो नहीं? यदि हां, तो आज अवसर है कि अपने आप को संसार से बाहर निकालें और प्रभु यीशु के पास आ जाएं, जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु प्यारे प्यारे तुम ही हो सहारा।